हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति उसके बल के आगे हारने लगी और वो धृति पर हावी होने लगा। धृति लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिशें करते हुए चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई तो उसकी मदद को आए, पर विवान अपनी सारी ताकत उसके नाजुक बदन पर आजमा रहा था। विवान अभी उसके लबों को अपने लबों तले रौंदने ही वाला था कि अचानक ही किसी ने उसके बालों को मुट्ठी में दबोचते हुए उसे झटके से पीछे की ओर खींचते हुए धृति से दूर किया और एक दमदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ा। विवान का जबड़ा हिल गया, मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो दूसरी ओर जाकर गिर गया। धृति उसके ऊपर से हटते ही झट से उठकर बैठ गई और डबडबाई आंखों से सामने देखा तो नज़र अर्णव पर पड़ी, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल था, आंखें अंगारों सी धधक रही थीं। उसकी तेज चलती सांसें चीख चीख कर बता रही थीं वो कैसे जल्दबाजी में यहाँ आया है। अर्णव ने एक नज़र धृति के जख्मी वजूद पर डाली। उसकी बिखरी हालत देखकर अर्णव की आंखों में खून उतर आया। उसने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर फैलाते हुए उस पर डाल दिया, जिसे धृति ने कस के थाम लिया और निगाहें झुका लीं। इतने में विवान संभल चुका था। उसने अर्णव पर वार करना चाहा, पर अर्णव ने बिना देखे ही उसकी मुट्ठी बनी हथेली को पकड़ गुस्से में उसकी बाह मरोड़ दी। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर उस कमरे की दीवारें कांप उठीं। इसके साथ ही अर्णव की गुस्से भरी कठोर आवाज़ वहां गूंज उठी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? एक और मुक्का विवान के मुंह पर पड़ा, वो फिर गिरने को हुआ, पर अर्णव ने उसके बाएं कंधे को थामते हुए उसे वापस सामने खड़ा किया और लगातार एक के बाद एक मुक्के उसके पेट पर जड़ने लगा। उसके मुंह से खून पानी जैसे बहने लगा था। गुस्से में अर्णव ने उसे उठाकर सीधा जमीन पर फेंका। वहां बिखरा कांच उसकी त्वचा को चीर गया। विवान दर्द से कराह उठा, पर अर्णव को उस पर रत्ती भर भी तरस न आया। उसने उसकी पीठ पर लात मारी और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी। अर्णव यही नहीं रुका, लगातार उसके पेट और पीठ पर पैर से वार करने लगा। अर्णव ना उसे संभलने का मौका दे रहा था और न ही पलटवार करने की गुंजाइश छोड़ी। इस वक्त उसके सर पर खून सवार था और इतने गुस्से में था कि लगातार उसे मारे जा रहा था। विवान का पूरा शरीर खून से सना था और अब तो वो होश भी खो चुका था, पर अर्णव रुकने को तैयार ही नहीं था। बेड के कोने से चिपक कर खुद में सिमटी हुई सी बैठी धृति, जो नम आंखों से सारा नज़ारा देख रही थी, अर्णव को गुस्से में बौखलाया देखकर उठकर उसके पास चली आई और उसकी बांह पकड़कर उसे विवान से दूर करने लगी। छोड़ छोड़ दीजिए उसे, वो मर जाएगा। अर्णव गुस्से में उसकी ओर पलटा और धधकती आंखों से उसे घूरते हुए दहाड़ा, मैं जान से मार दूंगा इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की, तुम पर बुरी नज़र डालने की? मेरी बीवी हो तुम, आज तक मैंने कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं छुआ। तुम्हारे साथ जबरदस्त, कहते कहते वो अचानक ही रुक गया। शादी की वो पहली रात उसकी आंखों के सामने घूम गई और ऐसा ही कुछ हाल धृति का भी था। अतीत की वो दर्द भरी याद उसके दिल को छलनी कर गई। दोनों के चेहरों के भाव कुछ बिगड़े। धृति की नम आंखों में मौन शिकायत पढ़ते हुए अर्णव ठिठक गया। कभी वो खुद धृति के साथ यही करने वाला था, ये याद आते ही उसके जमीर ने उसे धिक्कारने लगा और शर्मिंदगी से उसकी निगाहें झुक गईं। लब थरथराए, शायद कुछ कहना चाहते थे पर आवाज बाहर न आई। दोनों यूं ही बुत बने खड़े थे जब पुलिस और उनके गार्ड्स के साथ कबीर वहां पहुंचा। अर्णव, तू ठीक है? भाभी, आप ठीक तो हैं? कबीर ने बारी बारी दोनों से सवाल किया, जिस पर उन्होंने बस सर हिला दिया। कबीर, यहाँ सब संभाल लियो, मैं धृति को लेकर घर जाता हूँ। अर्णव ने खुद को संभाल लिया था। कबीर ने सर हिलाकर हामी भरी। अर्णव ने नज़र उठाकर धृति को देखा तक नहीं, बस उसकी हथेली थामकर आगे बढ़ गया। सारे रास्ते अर्णव ने एक बार भी धृति को नहीं देखा। शायद अपना किया वो गुनाह याद आने के बाद उसके अंदर धृति की नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। वहीं धृति कुछ देर खामोशी से उसे तकती रही, फिर उसका सर भारी होने लगा तो सीट से टेक लगाते हुए उसने अपनी आंखों को मूंद लिया और उन बंद पलकों के नीचे से गरम लावा पिघलकर उसके रुखसारों को भिगोने लगे। अर्णव ने कार सीधे मेंशन के अंदर वाले गेट के सामने जाकर रोकी। अब जाकर उसने नज़र धृति की ओर घुमाई तो उसका सर खिड़की ओर लुढ़का हुआ था। गालों पर आंसुओं के निशान मौजूद थे और पलकें भीगी हुई थीं। धृति का ढीला शरीर देखकर अर्णव को कुछ खटका। धृति, उसके पुकारने पर भी धृति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और न ही उसने कुछ कहा। अर्णव ने उसके कंधे को हिलाया, तब भी वो यूं ही स्थिर बैठी रही। अर्णव के माथे पर अब बल पड़ गए। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब धृति बेहोश हो गई। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलते हुए घूमकर धृति की ओर आ गया। दरवाज़ा खोलकर उसने धृति को अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर ही उसे शीला मिल गई। उसकी नज़र जब अर्णव की बाहों में मौजूद धृति पर गई तो उसकी हालत देखकर उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। सर, मैडम को क्या हुआ? बेहोश है, तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके आने को कहो। शीला ने सर हिलाया। इतने में अर्णव तेज़ी से आगे बढ़ गया। बाकी सब परेशान से ड्राइंग रूम में बैठे थे। अर्णव की बाहों में धृति को देखकर उनके मन में सैकड़ों सवालों ने जन्म लिया, पर अर्णव सबको नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और बाकी सब परेशान से बस उसे देखते ही रह गए। कुछ देर बाद, अर्णव, ये सब क्या हो रहा है? धृति ने तो कहा था कि वो अनाथ है, फिर उनकी जुड़वा बहन और आप उनकी बहन के साथ इतना गंदा सुलूक क्यों कर रहे थे? धृति कहाँ थी और ये सब कैसे हुआ? तब से जो सवाल सबके मन में तूफान मचाए हुए थे, आखिर में भावेश जी ने पूछ ही लिए थे। इस वक्त सभी नीचे ड्राइंग रूम में मौजूद थे। डॉक्टर धृति को देखकर जा चुकी थी। फिजिकली काफी टॉर्चर हुई थी वो, मेंटली और इमोशनली भी स्टेबल नहीं थी। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था तो इतना सब हैंडल नहीं कर सकी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया था, उसके जख्मों पर पट्टी भी कर दी थी। इस वक्त वो दवाई के असर से सो रही थी। भावेश जी का सवाल सुनकर अर्णव, जो धृति के लिए परेशान था, उसने चिंतित स्वर में जवाब दिया, डैड, बहुत लंबी कहानी है, आज रहने दीजिए, जल्दी ही आप सबको आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा मैं, अभी मुझे धृति के पास जाना है। इतना कहकर वो धृति की दवाइयाँ लेकर वापस कमरे में चला गया। उसने दवाइयाँ साइड टेबल पर रखी और धृति के पास बैठकर उसकी हथेली को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। उसकी दोनों मेहंदी रची बाहों पर पट्टी बंधी थी। चेहरे और शरीर पर कई जगह बैंडेज लगे थे। चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और होंठ सूख गए थे। गाल पर अब भी उंगलियों के निशान मौजूद थे जिन पर क्रीम लगी थी। अर्णव कुछ पल खामोशी से सुनी निगाहों से उसे तकता रहा, फिर भारी मन से बोला, उसने तुम्हें छुआ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं तो उसे जान से मार देना चाहता था। फिर तुम्हारे साथ तो सब हुआ था, वो भी दूसरी बार, तुम्हें कैसा लगा होगा? अपने गुस्से और नफरत में मैंने भी तुम्हारे साथ वही करने की कोशिश की थी जो आज विवान करना चाहता था, और उसका ये गुनाह माफी के काबिल नहीं। शायद तभी तुम भी मुझे माफ करने को तैयार नहीं हो, और मेरा गुनाह इस लायक है ही नहीं कि उसे माफ किया जा सके। आज सही मायनों में मुझे तुम्हारे दर्द और तकलीफ का एहसास हुआ है। आज मुझे पता चला कि मेरे कारण तुमने क्या कुछ सहा है और मेरे उन गुनाहों को माफ करना कितना मुश्किल है।
अगर इन गुनाहों की सज़ा तुम्हें खोकर तुम्हारी याद में तड़पना और जुदाई की अग्नि में पल पल जलना ही है, तो मुझे तुम्हारी दी ये सज़ा मंजूर है। बस कुछ वक्त और, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा इस रिश्ते से, प्रायश्चित करूंगा अपने गुनाहों की सच्चे दिल से। टू बी कंटिन्यूड।